ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की जिला पंचायतों को भी दिया जाएगा गौण खनिज निधि में हिस्सा। सेल चेयरमैन ने कहा कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है रावघाट परियोजना। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम में आएगा बदलाव। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा देने का आदेश जारी कर दिया है। खनिज साधन विभाग के अनुसार गौण खनिजों से मिलने वाली राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच तय अनुपात में किया जाएगा। इस निधि का उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम और सड़क जैसे विकास कार्यों में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस फैसले से पंचायतों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि दो दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सहायक होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू की जाएगी। इस संबंध में कल रायपुर में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाली की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में श्रीमती कंगाली ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी खरीफ वर्ष में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राइस मिलों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ अशोक कुमार पंडा ने अपने भिलाई प्रवास के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र BSP के परिचालन, उत्पादन, वित्तीय स्थिति और भविष्य की विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संयंत्र प्रबंधन को अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने, सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और उत्पादकता में निरंतर सुधार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पंडा ने कहा कि रावघाट परियोजना छत्तीसगढ़, सेल और पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। रावघाट में पर्याप्त लौह अयस्क भंडार मौजूद है। इससे देश को लौह अयस्क मिलेगा और भिलाई इस्पात संयंत्र की विस्तारित क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।
छत्तीसगढ़ के लिए, सेल के लिए और कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद है रावघाट, क्योंकि उसमें काफी रिजर्व्स हैं एंड रिजर्व्स को माइनिंग करते हुए कंट्री में अवेलेबल होगा आयरन ओर एज वेल एज भिलाई स्टील प्लांट का जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी आएगा उसमें भी इसका योगदान रहेगा। इसलिए सेल का मैनेजमेंट का सारे फोकस इसके ऊपर है। ये रॉ मेटेरियल सिक्योरिटी होगा जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी आ रहा है भिलाई में, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
श्री पंडे ने सेल की भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया कि कंपनी ने अगले 4 से 5 वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा है।
सेल ने अच्छा एफर्ट्स लिया है, डिफरेंट प्लांट्स में ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहा है एंड कहीं कहीं पर आगे बढ़ गया है, बाकी जगह में ऑलरेडी अप्रूवल हो चुकी है। तो उसी हिसाब से हम लोग 20 मिलियन टन से 35 मिलियन टन में चले जाएंगे 4-5 साल में, ये हम लोग का लक्ष्य है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने देशभर के अपने 20 प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में बीमित श्रमिकों के बच्चों के लिए 700 सीटें आरक्षित की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 21 जून कर दी है। छत्तीसगढ़ के श्रमायुक्त कार्यालय के अनुसार इन आरक्षित सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन नीट यूजी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। आज महान क्रांतिकारी, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री साय ने कहा कि भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले वीर सावरकर का जीवन अदम्य साहस, त्याग, राष्ट्रनिष्ठा और अट संकल्प की अमरगाथा है। विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित के प्रति उनकी अट प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। महासमुंद जिले में हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए के एलपीजी घोटाला मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ठाकुर पेट्रोकेमिकल अभनपुर के संतोष सिंह ठाकुर और सार्थक सिंह ठाकुर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक खाद्य अधिकारी अजय यादव और मनीष चौधरी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जिले के बमनी धान उपार्जन केन्द्र में हुए धान घोटाला मामले के मुख्य आरोपी और तत्कालीन केन्द्र प्रभारी गंगाधर जगत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 1.16 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के धान गबन का आरोप है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल 29 मई से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के मौसम में कल से बदलाव होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉ. गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस समय एक चक्रवाती घेरा झारखंड में बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश से तटीय आंध्र प्रदेश तक विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश के मौसम में कल से बदलाव होने के आसार हैं।
मेघ गर्जन का गतिविधि जो है वो कल से प्रदेश में आगामी 2-3 दिन तक रहने की चांसेस है। कल उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर इस प्रभाव से तेज हवा के साथ साथ ओलावृष्टि और वज्रपात होने के भी चांसेस है। लेकिन कल से लेके आगामी 4 दिन तक पूरा प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट आने की चांसेस है। गिरावट लगभग 2 से लेके 4 डिग्री होने की संभावना है।
इस बीच जगदलपुर में आज दोपहर मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान जगदलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में ओले भी गिरे। इधर गरियाबंद जिले में देवभोग थाना क्षेत्र के माहौलकोट गांव में आज आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। और राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई के रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कल 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की जिला पंचायतों को भी दिया जाएगा गौण खनिज निधि में हिस्सा। सेल चेयरमैन ने कहा कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है रावघाट परियोजना। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम में आएगा बदलाव। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।